हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 114 तभी भानु का आगमन। अचानक से विक्रांत के पास एक परछाई आई। ये भानु था, विक्रांत का सेवक, जो हमेशा उसकी हर आज्ञा का पालन करता था। भानु विक्रांत के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसकी नब्ज जांचने लगा। मालिक, भानु ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन वो अब भी शांत था। भानु ने चारों ओर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। मालिक, अब समय आ गया है, उसने बुदबुदाया। फिर भानु ने अपनी कलाई से खंजर निकाला और उसमें एक छोटा सा कट लगाया। खून की कुछ बूंदें विक्रांत के माथे पर टपकाई और धीरे धीरे उसका मंत्र शुरू कर दिया। भानु की आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी मंत्रों की गूंज बढ़ती जा रही थी और उसकी शक्तियां विक्रांत पर असर करने लगीं। कुछ ही पलों में विक्रांत की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा प्रवेश कर रही थी, लेकिन ये ऊर्जा शुद्ध नहीं थी। ये अंधेरे की शक्ति थी जो उसे अपने कब्जे में ले रही थी। विक्रांत की सांसें भारी होने लगीं और अचानक से उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। विक्रांत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अब वो पूरी तरह से शैतानी ताकतों के कब्जे में था। उसकी आत्मा पर अंधकार का शासन था और वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, विक्रांत ने गहरी आवाज में कहा। उसका स्वर अब पहले जैसा नहीं था। भानु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अब और भी शक्तिशाली हो चुके हैं मालिक, अब आप चंद्रिका को रोक सकते हैं। विक्रांत ने एक ठंडी हंसी हंसी और फिर एकदम से उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। चंद्रिका, या कहूं वसुंधरा, विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें हर हालत में ढूंढूंगा और इस बार तुम्हें भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। भानु ने सिर झुका लिया। आप जो चाहें मालिक, आपकी शक्ति अब अजेय है। विक्रांत ने अपनी काली आंखों से आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। उसने अपना ध्यान चंद्रिका पर केंद्रित किया और कुछ ही पलों में वो हवा में गायब हो गया। वो अब शैतान के कब्जे में था और चंद्रिका को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एपिसोड चंद्रिका और विक्रांत का रहस्यमय सफर। विक्रांत और चंद्रिका हवा में तैरते हुए तेजी से एक अनजान दिशा में बढ़ रहे थे। चंद्रिका की आंखों में दृढ़ संकल्प था, जबकि विक्रांत अब भी बेहोशी की हालत में था। दोनों के चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा की आभा चमक रही थी, जैसे किसी अनजान शक्ति ने उन्हें अपने घेरे में ले रखा हो। हवा के थपेड़े उनके चारों ओर गरज रहे थे और आकाश में अजीब सी उदासी फैली हुई थी। चंद्रिका ने विक्रांत की ओर देखा, जो अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूती से थामे हुए थी। तुम्हें होश में आना होगा विक्रांत, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखों में विक्रांत के प्रति एक अजीब सा अपनापन झलक रहा था। इसी बीच अचानक उनके सामने आसमान में एक उजाला चमकने लगा। उस रोशनी के बीच से दो आकर उभरे, महात्मा माणिकनाथ और विक्रांत के दादाजी। दोनों का चेहरा गंभीर था, मानो वे इस पल का पहले से इंतजार कर रहे थे। माणिकनाथ ने हाथ उठाते हुए दोनों के रास्ते में बाधा डाल दी। रुको चंद्रिका, तुम दोनों का ऐसे गायब हो जाना सही नहीं है। चंद्रिका की आंखें ठंडी हो गईं, उसने गंभीर स्वर में कहा, हमें यहां से दूर जाना होगा, यही सबके लिए बेहतर है। विक्रांत, जो अब भी चंद्रिका की बाहों में था, अचानक से होश में आने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने खुद को चंद्रिका के साथ हवा में तैरते हुए देखा। जैसे ही उसकी आंखें माणिकनाथ और अपने दादाजी पर पड़ीं, उसकी आंखों में फिर से गुस्सा भर गया। उसकी शैतानी शक्तियां एक बार फिर से जाग उठीं। तुम लोग हमें रोक नहीं सकते, विक्रांत जोर से चिल्लाया और माणिकनाथ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चंद्रिका ने उसे थाम लिया। विक्रांत, रुको, चंद्रिका ने सख्ती से कहा, तुम्हारे गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होगा। विक्रांत हालांकि बेहोशी से अभी भी थोड़ा कमजोर था, फिर भी उसकी आंखों में शैतानी क्रोध झलक रहा था। मुझे उन्हें खत्म करना होगा, ये लोग हमें नहीं समझ सकते, उसने गुस्से में कहा। विक्रांत के दादाजी ने आगे बढ़ते हुए कहा, विक्रांत, ये तुम नहीं हो, ये वो शक्ति है जिसने तुम्हें अंधकार में धकेल दिया है। हम तुम्हें बचाना चाहते हैं बेटा। लेकिन विक्रांत उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो चंद्रिका की ओर मुड़ा और कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, अब और रुकने का समय नहीं है। माणिकनाथ ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, चंद्रिका, क्या तुम नहीं समझती कि विक्रांत अब इस शैतानी शक्ति के वश में है? तुम उसे कहाँ ले जा रही हो? क्या तुम उसकी और अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रही? चंद्रिका ने ठंडी निगाहों से माणिकनाथ की ओर देखा। ये शक्ति अब मेरे वश में है माणिकनाथ, मैं जानती हूँ क्या करना है। तुम लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, विक्रांत के दादाजी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। चंद्रिका, तुम उसे खतरे में डाल रही हो, उसे इस शैतानी शक्ति से मुक्त करना होगा, यही उसकी असली नियति है। लेकिन चंद्रिका की आंखों में कोई संकोच नहीं था। मैं उसकी नियति को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे इस बारे में किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। विक्रांत ने चंद्रिका का हाथ कसकर पकड़ा और माणिकनाथ और अपने दादाजी की ओर एक बार फिर गुस्से से देखा। तुम लोग हमें यहाँ रोकने की कोशिश मत करो, अगर मैं रुका तो सब खत्म हो जाएगा। माणिकनाथ ने एक आखिरी कोशिश की। चंद्रिका, विक्रांत को लेकर भागने से उसकी मुक्ति नहीं होगी, ये शक्ति उसे और बर्बाद करेगी। तुम्हारे पास उसे बचाने का मौका है, तुम उसे अंधकार में मत ले जाओ। लेकिन चंद्रिका की आंखों में कोई संकोच नहीं था। मैं उसकी नियति को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे इस बारे में किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। विक्रांत ने चंद्रिका का हाथ कसकर पकड़ा और माणिकनाथ और अपने दादाजी की ओर एक बार फिर गुस्से से देखा। तुम लोग हमें यहाँ रोकने की कोशिश मत करो, अगर मैं रुका तो सब खत्म हो जाएगा। माणिकनाथ ने एक आखिरी कोशिश की। चंद्रिका, विक्रांत को लेकर भागने से उसकी मुक्ति नहीं होगी, ये शक्ति उसे और बर्बाद करेगी। तुम्हारे पास उसे बचाने का मौका है, तुम उसे अंधकार में मत ले जाओ। लेकिन चंद्रिका ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए विक्रांत को साथ लेकर आगे बढ़ने की ठान ली। मैं जानती हूँ कि तुम सब हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ से जा रहे हैं और कोई हमें वापस नहीं ला सकता। विक्रांत की आंखों में शैतानी चमक और बढ़ गई थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से दोनों के सामने से निकलने की कोशिश की, लेकिन माणिकनाथ ने उन्हें रोकने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। चंद्रिका ने भी अपनी दिव्य शक्ति को केंद्रित किया और दोनों के सामने एक अजीब सी धुंध छा गई। कहानी जारी रहेगी।